सत्र के आज अंतिम कक्षा है। कल श्री जगन्नाथ भगवान आपके यहाँ यात्रा पर निकलेंगे अपने रथ में। तो आज इस अंतिम कक्षा में जो आप लोग श्रद्धालु भक्तगण मातागण पधारे, सबको मैं विशेष स्वागत करता हूँ और श्री भगवान जगन्नाथ जी के चरण में प्रार्थना करूँगा कि आप लोग को उनके आशीर्वाद प्राप्त हों। हरे कृष्ण। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जमदूत के युक्ति को सुन करके विष्णुदूत ने अपने जवाब प्रस्तुत किए और इतने प्रेशर डाले कि जमदूत अपने युक्ति पर इतने स्ट्रांग थे, उनका केस बहुत स्ट्रांग था और उनके लॉ बुक के अनुसार बिल्कुल सही था। बिल्कुल उन्हें किताब दिखाया, लॉ बुक दिखाया, सब दिखाने पर भी हार के आए, डिफिट हो गए केस में। जो वारंट शीट ऑर्डर लेकर गए थे अजामिल को लेकर आने के लिए पापी को बांध करके, तो उसको अरेस्ट करके लाते समय में वो कहाँ से टपक पड़े चार पुरुष, उनको धमकी दे करके उनसे छुड़ा दिए। तो इसलिए घोर अपमानित और डिफीट होकर के केस में हार करके, सारे सबूत स्ट्रांग केस था उन्हें पर भी हार करके, बुरी तरह से अपमानित होकर के अपने जमराज के पास गए हैं और अजामिल को किस प्रकार और विष्णुदूत ने छुड़ा दिए और अजामिल के किस प्रकार गति हुआ, गति के मुक्ति हो गया और तो चला ही गया। इस बात को सुन करके परीक्षित महाराज सुखदेव जी को पूछे कि गुरु जी, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, अजामिल तो मुक्ति हो गया लेकिन ये जो संजमनी पति जमराज, जो समस्त सांसारिक जीवों के धर्म और अधर्म के नियामक है, उनके आज्ञा को उल्लंघन कर दिया गया और उनके दूतों को इस प्रकार डिफीट कर दिया गया, इतने बड़े उनके उच्च न्यायालय के आदेश को अमान्य कर दिया गया, डिजनर कर दिया गया, तो उसका क्या परिणाम हुआ? वो लोग ने जाकर क्या के क्या परिणाम हुआ? बात ऐसा है, क्योंकि अभी तक सृष्टि में ये सुना भी नहीं गया कि देखा भी नहीं गया कि जमराज के आदेश के भी कोई उल्लंघन हो सकता है। ये सर्वोच्च न्यायकर्ता हैं, धर्मराज हैं, उनके आदेश को इस प्रकार के उल्लंघन करना और पता नहीं कौन किए, तो उनके जो दूत इस प्रकार हार करके आए थे कैसे डिफीट हो करके, और बहुत चिंतित थे वो, तो ऐसे सोचते थे, गुस्से करते थे, बोले पता नहीं हमारे मालिक का कुछ ताकत है या नहीं, पावर है कि नहीं, ये कौन है, हम तो अभी तक फर्स्ट टाइम हमारा रिकॉर्ड में वो उनके बात को मान्य कर दिया गया और खोल दिया, हमसे जबरदस्ती छीन लिया। तो इस बात को सुनकर लोग में तो बड़े संदेह होगा कि जमराज के बात पर भी आदेश भी इस प्रकार के अन्याय उल्लंघन हो रहा है, तो इसलिए इस शंका का निवारण आप कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न सुनकर के सुखदेव जी ने बोलने लगे, हे राजन, निश्चित रूप से इस अतिक्रोधित अपमानित और चिंतित होकर के हार करके जमदूतों ने अपने स्वामी के पास गए, जा करके सबसे पहले पूछे, बोले हमारे स्वामी सबसे पहले हमको ये बताइए कि आप नियामक है, आप मालिक है ना, आपके अलावा और भी कई हैं। हमको पहले ये बताओ, हम तो यही मानते थे आप सबसे बड़े न्यायकर्ता है, नियामक है, धर्मराज है। आपसे ऊपर कोई है या आपके अलावा और भी कोई दस पांच और भी है क्या? जमुना सुन के आश्चर्य बोले, ऐसा क्यों मुझे पूछ रहे हैं? बोले कि नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि इस बार जो हमारा साथ घटना हुआ कभी नहीं हुआ था, और आपके अर्डर लेकर गए, किताब की किताब लेकर गए थे, पूरा लॉ अर्डर के साथ हमारा केस इतने मजबूत, इतने स्ट्रांग था, लेकिन कहां से वो चार टपक पड़े, हमको मार भगाए, छुड़ा दिए केस, आपके आदेश के अनुसार पापी को बांध लिए थे, छीन लिए, हमको भगा दिए। तो हम उनके मन में ही शंका हो गया था, जमदूतों का मन में, अगर हमारा मालिक हमको रक्षा नहीं कर पाता, हम हार गए पूरी तरह से, अपने नियम पर कट्टर थे हम, कोई गलती नहीं की, लेकिन हमारे स्वामी हमको बचाव भी नहीं कर पा रहे, ये इसे स्वामी के काम करे या ना करे जान देना, ठीक है? बड़े दुखी थे। तो बोले बोले कितने शास्तारम, कति शास्तारम, कितने नियामक है, दंडधारी आपके अलावा और कोई है क्या, पहले बताओ। और अगर आप कहेंगे कि दंडधारी और है तो और गड़बड़ बात है भाई। एक ही केस को अगर एक कोर्ट में डिसाइड होते जज, और एक ही वही जजमेंट यहाँ हुआ, और भी दूसरा जजमेंट हुआ, तीसरा, अलग अलग जगह पर अलग अलग जजमेंट होगा, उसको दंड कहीं मिलेगा, कहीं पुरस्कार मिलेगा, तो गड़बड़ होगा सब, कोई ठीक जजमेंट मिलेगा नहीं किसको, ये कैसे हो सकता है? वो ये कहना चाहते थे कि पहले कि हम बुरी तरह से हार करके आए, उनको पता नहीं वो कौन थे, आप उनको बुलाइए, हम नाम बताते हैं उनका, आप उनको समन जारी करके बुलाइए, बुला करके उनको प्रमाण कर हमारा सामने दंडित कीजिए, नहीं तो ये इतने शर्मिंदा हमको किया, हम तो सुसाइड कर डालेंगे, ये तो बहुत अपमान की बात है। इस प्रकार से जमराज को उन्होंने बोले बोले अगर आप बोलेंगे कि अनेक लोग हैं काम करने वाले, तो कर्मी बहुत हैं जगत में, अनंत संसार है, तो उनको एक ही जज होगा तो कैसे जजमेंट मिलेगा, इसलिए अनेक जजमेंट, ठीक है अनेक न्यायालय हो सकता है, अनेक हाईकोर्ट हो सकता है, अनेक जज हो सकता है, लेकिन कानून तो एक ही होना चाहिए, कानून भी अलग अलग होगा, कोर्ट अलग अलग है, कानून भी अलग अलग है, ऐसे कैसे हो सकता, दोषी एक है और उनके लिए कोर्ट कचहरी अलग है और कानून भी अलग अलग है, ऐसे कैसे चलेगा? हम देखते हैं इस भौतिक संसार में भी दोषी कहीं आज अपील किया या उनको ये जजमेंट मिला, फिर जाके दूसरे वो अपील करता, कहीं वो छूट जाता है, फिर हम देखते हैं आजकल संसार ऐसे होता रहता, लेकिन ये भले इस अपूर्ण संसार में ऐसे हो सकता है, लेकिन साक्षात प्रकृति के नियामक, प्रकृति के मालिक भगवान के दरबार में ऐसे तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो एक ही कानून, एक ही नियम होना चाहिए, सब इसी से चले, तो इस प्रकार होगा तो फिर दुनिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कैसे चलेगा न्याय, कैसे चलेगा? आप न्याय दंडधारी हैं, तो कृपा करके हमको ये बताइए, और हमारे बहुत सीरियस मामला है, हम अगर बताकर संतुष्ट नहीं करेंगे, हम तो काम दम नहीं करेंगे, हम रेजिग्नेशन रखे, नहीं तो हम जाएंगे छोड़ कर। बहुत दुखी होकर के, अपमान महसूस करके जमराज के, जमराज बोले बोले भाई बताओ तो सही क्या हुआ घटना, ना सार क्या हुआ बताएं। सुनिए, आपने आदेश तय किए थे, निर्णय आप लिए थे, आपका निर्णय तो सर्वोच्च निर्णय है, हम तो अभी तक यही मानते थे कि आप हमारे स्वामी नहीं, पूरे संसार के दंडधारी है, स्वामी है, धर्म अधर्म के नियामक, यहाँ तक कि देवताओं भी ऊपर आपका अधिकार है, देवलोक में भी, और आपका निर्णय अंतिम फाइनल डिसीशन है, और लेकिन आज आपके फाइनल डिसीजन ऑर्डर शीट हम लेकर के गए थे और वो डिजनर कर दिया गया, डिजनर किया, सार बताया, हम उनको पहचानते भी नहीं, वो कहाँ से आए, सिद्ध से मालूम पड़ते थे, चार हाथ वाले थे सब, इतने खूबसूरत चेहरा था, चार चार हाथ वाले थे, हम तो अपना उपन लेकर, अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं, तो पूरा आर्म्ड फोर्स आए थे, आकर के जबरदस्ती डांट पीट करके भगा दिया, हमको लॉ एंड ऑर्डर दिखाए, अडरशीट देखा है, लेकिन माने नहीं, डिजनर किए, उच्च न्यायालय का आदेश को अमान्य किए, अवमानना किए। हम तो सार आपको बांध चुके थे अजामिल पापी, तो क्योंकि उनका पूर्ण विश्वास था, अभी तक भी पूर्ण विश्वास था कि वैदिक नीति के अनुसार तो अजामिल तो पापी है ही है, और पापी की दंड वही जातना होना ही चाहिए। बोले गलती हमारा कहाँ है, इसलिए उनको पूर्ण अपने तरफ से पक्के थे राइट, हम बिल्कुल गलती नहीं किए थे, और आपने अर्डर शीट लेकर गए थे, लेकिन हम जाकर अरेस्ट कर चुके थे। अरेस्ट करके लाते समय पता नहीं वो नारायण करके चिल्लाया, पता नहीं चिल्लाया नारायण करके, बाकी लोग तो मारे बाप रे इमाम ही बाप चिल्लाते हैं, लेकिन वो नारायण चिल्लाया, नारायण चिल्लाया, उनके मुंह से शब्द का अंत नहीं हुआ। चार लोग बड़े सुंदर देखते हुए, खूबसूरत पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने थे, कमल की माला लगाए थे, इतने सुंदर चेहरा, किरीट कुंडल मुकुट पहन करके, अरे अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़ आए छप्पे, वो चिल्लाते रहे, अरे डरो मत हम आ गए। हम देखे कौन है, अरे आए आ करके हमको तो पीटे नहीं, हम तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, छीन करके आपके रस्सी खोल दिए सर, बंदा हुआ रस्सी को खोल करके हमारे सामने हमको बुरी तरह से अपमानित करके घाल करके भेज दिए। हम सारे पॉइंट बताए उनको, किताब खोल कर दिखाए, लेकिन माने नहीं, अवमानना करके हमको लज्जित करके अपमानित करके भगा दिए। तो इसलिए आपको बहुत सीरियस मामला है सर, आप इमीडिएट हमको बताइए क्या है घटना, हम और काम करें या ना करें। इतने अपमानित हम लाइफ में कभी नहीं हुए थे। इस बात को सुन करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब इतने सारे कंप्लेन एक साथ में उसमें कर गए, बहुत दुखी थे, अपमानित थे, इतने सारे कंप्लेन जो किए, तो समस्त भौतिक संसार के एकमात्र दंडधारी, धर्म और अधर्म के नियामक, समस्त जीव के स्वामी संजीवनीपति श्री जमराज ने जैसे सुने इस उनके दूतों के मुख से, उन्होंने बोलते नारायण बोला तब टप पड़े, नारायण नाम सुन करके इतने प्रसन्न हो गए। बोले मेरे रूलिंग के टाइम में मैं जितने दिन शासन किया, आप लोग जितने काम किए, अभी तक ये नाम कोई उच्चारण किया ही नहीं था, फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दिस नेम। क्योंकि बात सही है, क्योंकि जमराज के पल्ले में जो आते हैं, कोर्ट में जो आते हैं, बाकी तो पशु पक्षी को जाते नहीं, केवल मनुष्य जाते, और मनुष्य में भी जो धार्मिक मनुष्य अच्छे मनुष्य तो नहीं जाएंगे, जो बदमाश है पापी है वही जाता है, और पापी मनुष्य तो नास्तिक होते हैं, मानते नहीं भगवान, वो कहे कि भगवान नाम ले, और उनको मारपीट करने वाले भी कहेंगे, तो इसीलिए वो नाम कभी उच्चारण हुआ ही नहीं था। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में जमपुरी के अंदर जमदूतों ने बोलते ये क्या है, नारायण बोलते ये घटना हो गया, नारायण नाम को सुन करके अपने दूतों के मुख से जमराज इतने प्रसन्न हो गए, आँख बंद करके कृतांजलि हाथ जोड़ करके अपने प्रभु को प्रणाम किए, अश्रुपूरित नयन हो गया, आँख झर बैठा। बोले मालिक आज आपका इतनी कृपा, मेरे दूतों भी आपके नाम ले रहे हैं, मेरे कोर्ट में अभी तक आपका नाम हुआ ही नहीं था उच्चारण, आज ऐसे प्रणाम किए, पहले खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। बोले मामला बहुत सुधर जाएगा, अभी तो ये प्रभु के साथ में कुछ पल्ले पड़े अभी तक तो उनके ऐसे केस नहीं हुआ था जो उनका उनके साथ पंगा पड़ा है। तो प्रणाम करके वो जमदूत ने देख रहे, बोले सार को हो गया, आँख बंद करके आँख से आंसू बह रहा है, प्रणाम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई, उनको समझ में नहीं आ रहा था। प्रणाम करके जमदूत ने बोलना, जमराज ने बोलना शुरू किए, बोले हे मेरे बेटे, हे मेरे दूत प्रिय, आप अभी तक बड़े विश्वास के साथ मेरे काम कर रहे हैं, मैं भी बड़े भरोसा आपके ऊपर रखा हूँ, कभी आप गड़बड़ नहीं किए हैं, नियम के हिसाब में आप बिल्कुल काम करते हैं। आप मुझे जो ये पूछे प्रश्न कि कितने जज हैं, कितने नियामक हैं, तो उसका उत्तर मैं पहले बताता हूं। आप अभी तक जो मन में ये सोच रखे कि मैं ही सबसे उच्च न्यायालय के उच्च अधिकारी हैं, ये आपके गलत फहमी है। और ये उनको दूत की दुर्गा है, आप नहीं है। बोले ये आपके गलत फहमी था, क्योंकि अभी तक कुछ चांस नहीं मिला था आप पूछने के लिए, मुझे बताने के लिए। ऐसा कभी सिचुएशन हुआ ही नहीं था। आज आपने पंगा ले लिया किसी वक्त में, तो मैं क्या करूँगा। सिचुएशन आज ही ऐसे केस आया, तो मैं आज सत्य बताता हूँ आपको। मैं जो आप मानते हैं सर्वोच्च अधिकारी, ऐसे आपका मानना एक तरह से ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, मैं सर्वोच्च अधिकारी नहीं हूँ। अरे मैं क्या, मैं कैसे हो सकता हूँ। मेरे जो जुरिस्डिक्शन है, मेरे जो अधिकार है, मेरे अधिकार में तो केवल चार लोग ही आते हैं, अचर तो कोई आते नहीं। इस संसार में चर और अचर दो प्रकार के जीव रहते हैं। चर अचर समझते ना, उद्भिद और प्राणी। उद्भिद चल नहीं सकते हैं, अचर कहते हैं, और जो चल फिर सकते हैं चर बोलते हैं। बोलते ये अचर तो आते नहीं मेरे पास, वो भी जीवात्मा है, वो नहीं आते। तो चलने फिरने वाले प्राणी है 84 लाख डिजाइन के, 84 लाख शरीर वाले, उनमें से 80 लाख को तो छूटो आते ही नहीं मेरे पास, क्योंकि वो पाप करते ही नहीं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जलतर सरसर जितने हैं वो पाप करते नहीं, तो मेरे पास वो भी नहीं आते। 80 लाख तो आते ही नहीं, बाकी रही 4 लाख मनुष्यों की बात। 4 लाख मनुष्य में जो सच्चे भक्त हैं, जो धर्म के अनुकूल सदाचार से चलते हैं, वो भी मेरे पास नहीं आते, क्योंकि मेरे पास तो केवल पापी के फाइल है। मैं केवल पाप की दंड दाता हूँ, वो केवल पापी मेरे पास आते हैं। तो इसी मनुष्य लोक में भी कुछ जो पद्मास्त पाप करते हैं वो ही मेरे पास आते रहते हैं, आप उनको लेकर आते हैं। तो इसलिए ऐसा कभी सिचुएशन बना ही नहीं था। और पापियों के दंड देने में मैं सबसे हाई अथॉरिटी हूँ, ये तो मानता हूँ। पाप के दायित्व मेरे ऊपर है, मैं पाप के निर्णायक हूँ मुख्य। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं कि, तो इसलिए मेरा अधिकार, और भी बहुत सारे देवताएं हैं मेरे अलावा, मैं भी एक देवता हूँ, और भी अनेक देवताएं हैं, उनका भी अपना अपना अधिकार है। लेकिन सारे देवताओं का अधिकार सब है, लेकिन सारे देवताओं के अधिकार ऊपर में एक परम अधिकारी और है। मुझे सर और परम अधिकारी, अरे देवताओं के उधर तो परम अधिकारी तीन और है, सारे तीन अधिकारी वो है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। एक बनाने वाले, एक बिगाड़ने वाले, एक चलाने वाले, है ना। नहीं तो वो तीनों तो सुप्रीम अथॉरिटी है, लेकिन वो भी सुप्रीम नहीं है, उसके ऊपर भी और एक सुप्रीम है। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, सारे कारणों का कारण एक है, एक ईश्वर। वो ईश्वर को भी ईश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर एक ही है, वो गोविंद है, वो सचिदानंद विग्रह है, वो कुछ नहीं करते हैं। भगवान के परिचय के बारे में एक घटना मेरे याद आता है। एक सब्जेक्ट में एक व्यक्ति पीएचडी कर रहे थे। इंडिया के लोग तो पीएचडी ऐसे सर्टिफिकेट लेने के लिए करते हैं, इतना दम नहीं लगाते हैं, इतने रिसर्च नहीं करते हैं। विदेश में लोग तो जिसके पीछे पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, पूरा जीवन इसके पीछे लगाते हैं टाइम। तो जर्मन में एक बुद्धिजीवी थे, उन्होंने गवेषणा कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। उनका जो सब्जेक्ट था गॉड, भगवान के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने विदेश प्राच्य संस्कृति में और जितने और भाषा जानते थे, सारे भाषा में जितने भगवान के ऊपर पुस्तक था सब पढ़ लिए। सब पढ़ करके अब अपना रिसर्च तैयार कर रहे थे, तो फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हो रहा था। तो उनका गाइड से कंसल्ट किए और से कंसल्ट किए, वो लोग बोले अरे मूर्ख, तू भगवान के विषय में रिसर्च करना चाहते हो, भगवान जहाँ प्रोडक्शन सेंटर है वहाँ जाना चाहिए, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, टाइम खराब करो ना। कहा अरे इंडिया जा, भारत में जा, भगवान तो हमेशा भारत में ही होते हैं, यहीं बनते हैं, और कहीं भगवान नहीं बनते। आजकल ही भगवान बनते रहते हैं, हाँ। आप लोग को पता भी होगा कई भगवान अभी कहाँ कहाँ है, किस प्रकार अवस्था में है। तो तुम यहाँ क्यों टाइम खर रहा है, भगवान के बारे में रिसर्च करना है तो यू हैव टू गो टू इंडिया, अब भारत जाना होगा। तो ये सलाह लेकर के उन्होंने भारत आए। भारत में आकर के उनको रिसर्च करना था, बड़ा सीरियस कैंडिडेट थे वो। आकर के भारत में हर प्रांत में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर प्रांत में, हर स्टेट में लगभग गए और जाकर लोगों से इंटरव्यू लिए, बड़े बड़े मंदिर आदि में गए, जाकर के बरसों तक समय बिताए और अपने गवेषणा किए। कितने लोगों को इंटरव्यू लिए होंगे, कितने किताब पढ़े, कितने प्रयास किए, कई वर्ष उन्होंने भारत के हर प्रांत में हर स्टेट में जाकर रिसर्च किए। भारत में तो आप जानते हैं कितने गोष्ठी होते हैं, एक तरफ से जैसे आप कहीं महाराष्ट्र साइड आओ तो यहाँ तो भगवान गणपति बाबा है ना, हनुमान गणपति तो भगवान वही है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड भगवान गणपति है। अब और डाउन चले जाओ केरला की तरफ, यहाँ तो कार्तिक अय्यप्पा है ना नहीं, और नीचे चले जाओ तमिलनाडु साइड में, वहाँ तो नारायण है। उत्तर की तरफ जाओ पहाड़ी क्षेत्र में तो जय माता दी, उनका बड़े गोष्ठी है। और उत्तर भारत नीचे तरफ जाओ तो हर हर महादेव। अब कितने कहाँ कहाँ है जो क्या बोले। तो इसलिए मैं हरेक प्रांत में हरेक मंदिर में जो जो उनके शास्त्र प्रमाण के साथ में लोकाचार देश काल पात्र शास्त्र के सभी तरफ से उन्हें रिसर्च किए करके कई वर्षों के बाद जो वापस जा रहे थे तो रिपोर्टर उनके पीछे पड़ गए, बोले सर बताए आपके रिसर्च क्या निर्णय आपने किए। निर्णय तो मैं रिसर्च पेपर जाके वहाँ लिखूंगा नहीं, आप तो इतने दिन रिसर्च किए कुछ तो यहाँ पे क्या सीखे, क्या मतामत आपका थोड़ा बताइए। तो उन्होंने एक बात कहे, बोले देखो मेरा जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मैंने लिया गढ़ के बारे में, मैं इतने सालों भारत के हर जगह में गुजर करके पूरे डिटेल स्टडी किया रिसर्च किया, आप अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, भगवान कौन है, तो मैं कहता हूं मेरा ओपिनियन में दी भगवान जो है वो वृंदावन वाले हैं जो बांसुरी लेकर के खड़े हैं, बाकी जो हम नहीं मानते भगवान। बोले कैसे आप कैसे इसे कैसे कह सकते हैं, क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण सुनिए मेरा जब मतामत। बोले क्या? बोले मैं तो भगवान कर जो मानता हूं, भगवान मतलब जो मालिक है, जो सच्चा मालिक हो, सबसे ऊंचा मालिक वही हो, वही भगवान होगा। जो सचमुच में मालिक होगा वो कोई काम करेगा? उनके सकड़ों नौकर वाकर चाकर होंगे काम करने के लिए, वो कहे कोई काम करेगा? उनके तो नहलाने वाले खिलाने वाले पिलाने वाले चलाने वाले सब होंगे, सकड़ों हजारों उनके दास दासी होंगे, वो खुद थोड़ी काम करेगा, उनका कोई ड्यूटी नहीं होगा, मालिक है। तो इसलिए मैंने देखा भारत के हरेक प्रांत में जाकर के बड़े बड़े मंदिर में सब जब देखा, जो जो सब भगवान करके जो जहाँ पूछते हैं वो भगवान को मैंने देखा, यद्यपि उनको पूछते हैं लेकिन सभी कोई ना कोई अस्त्र धारण किए, कोई त्रिशूल धारण किया है, कोई दो चार पांच धारण किए, एक नहीं एक दो नहीं, कोई ज्यादा एक से अत्याधिक अस्त्र लिए हैं, कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र धारण किए। उनको देख करके समझा दे आर ऑन ड्यूटी, वो हाथ में लिए मतलब तो ड्यूटी में है भाई। कोई सैनिक अगर गन पकड़ खड़ा है मतलब उनके ऊपर तो कोई कमांडर होगा, कोई ऑर्डर देना तब तो गन में खड़ा है कि ऑन ड्यूटी है। जब वो खुद ड्यूटी करने वाला है तो उसके ऊपर में अधिकारी और कोई होगा, ये हो नहीं सकता। तो मैंने हरेक प्रांत में देखा सब ड्यूटी करने वाले हैं, सब अस्त्र शस्त्र धारण किए, बिना अस्त्र में कोई नहीं, कोई धनुष बाण धारण किया, कोई चक्र धारण किया, कोई गदा शंख क्या क्या सब अनेक अनेक प्रकार सब ऑन ड्यूटी है। तो इसलिए मैं डिसाइड किया ये कैसे परम भगवान हो सकते हैं, वो तो सब काम में लगे, तो काम कराने वाला और कोई होगा जिसके लिए काम करते हैं। लेकिन सब देख देख कर जब वृंदावन में आकर देखा, यहाँ जो भगवान मानते हैं ये तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, बिंदास जमुना तीर वनचारी, बिल्कुल रिवर्स सोर्स में है नदी के किनारे उपवन में, और अपना गर्ल फ्रेंड के साथ में नाचता है, गाता है, बांसुरी बजाता है। मैं बोला वही भगवान हो सकता है, उसका कोई काम नहीं, कोई ड्यूटी नहीं है, मजा लेता है वो तो, वो तो मजा लेता है, नाचता है, गाता है, मस्त बस, और कुछ नहीं काम उसका, तो ही भगवान हो सकते हैं, कि उनका कोई कर्तव्य नहीं, कोई कार्य, कोई दायित्व नहीं, सारे उनके लिए करते हैं, वही सत्य है। जो जानकार पंडित गण कहते हैं, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जे छे नाचाए ते छे करे नृत्य, एकमात्र ईश्वर तो परमेश्वर तो कृष्ण है, बाकी सारे देवा देवी मनुष्य पशु जो कुछ है सब उनके भृत्य है, जिनको जैसे अड़त देकर काम में लगाता विचारे करते हैं, वही एक है सुप्रीम, जिनको कुछ करना नहीं है, वो तो मस्ती से अपना आनंद में लूट, तो उनका ये कहना था, वो सच्चाई वही था। तो इस प्रकार अब जमराज कहते हैं कि आप ये सोचते हैं कि मैं बड़े हूं, अरे मैं नहीं, मेरे से और भी बड़े बड़े देवता हैं, और देवताओं के ऊपर भी परम देवता और तीन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक सृष्टि बनाते हैं, एक सृष्टि के संचालन करते हैं, एक सृष्टि के संहार करते हैं, लेकिन वो भी परम अधिकारी नहीं है, वो भी अडर्स में खड़े हैं, आज्ञा पालनकारी हैं, एक सर्वोच्च अधिकारी है, सर्वोच्च अधिकारी जो है वो है कृष्ण, और जिनके आज्ञा पालन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर समेत हम जितने अधिकारी देवता वर्ग है उन्हीं की आज्ञा के ताक में बैठे हैं, जो ऑर्डर आएगा सार 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 ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक आपका पल्ले में ऐसा केस नहीं पड़ा था, हमारा ये नहीं आया था, लेकिन आज मैं बड़े प्रसन्न हूँ कि आप भी मेरे प्रभु के नाम उच्चारण किए हैं, अब मेरे प्रभु के नाम उच्चारण किए हैं, जो केस मुझे बता रहे हैं, जो आप डिफीट होकर आज आए हैं, ये डिफीस नहीं, ये आपके लिए लेसन है। ये जमदूत सुन करके आश्चर्य होकर बैठ गए, वो तो ये सोचो तो सर उनको बुलाइए, हमारे सामने उनको दंडित कीजिए, तो हमारा काफी बेइज्जत किए हैं, वही चाहते थे कि उनको जमराज से बड़े अफसर हायर अथॉरिटी बुलाएं उनको, लेकिन वो जानते थे कि जमराज सर्वज्ञ भी हैं, वो जानते उनसे सही इन्फॉर्मेशन मिल गया, इसलिए पूछे थे। तो जमराज ने आज उनको पहली बार ये शिक्षा दी, बोले बैठ जाओ, मैं बताता हूँ, सही बात बताता हूँ, कि जो आप अभी तक सोचे थे कि मैं ही हायर अथॉरिटी हूँ, मैं नहीं हूँ, ये मेरे उच्च अधिकारी हैं, और बाकी जो आपको चैलेंज किया गया धर्म के सिद्धांत के ऊपर, धर्म की नीति आप अभी तक जो पढ़े थे, वेदो प्रणहितो धर्म अधर्मस्तद विवर्जय, ये वैदिक सिद्धांत वेद में लिखा गया है, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, कोई गलत नहीं आपका, वेदो नारायण साक्षात, आपका कहना बिल्कुल डिटो, लेकिन ये जो वैदिक नीति है ये लौकिक नीति लोकाचार में कर्मकांड के आधार पर है, ये तीन गुण के आधार पर है, इस संसार में समाज को सही तरीका से चलाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए इस प्रकार के न्याय नीति से रखा गया है, लेकिन जो उससे परे हैं, जो त्रिगुणाती तीन गुण से परे हैं, ऐसा भी एक धर्म है जिनको परम धर्म कहा जाता है, जिसको भागवत धर्म कहा जाता है, उस भागवत धर्म के बारे में तो मैं क्या, साक्षात देवराजेंद्र चंद्र वरुण वायु कुबेर अष्टवसु अग्नि आदि देवता अंचास मरुत सारे नाम ले लिए, कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जानता, वो धर्म कौन बनाया, वो संविधान, बोले ये संविधान जो परम धर्म भागवत धर्म है, वो धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, वो साक्षात भगवान ने बनाया, ये कानून उनका बनाया, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ कानून, वो कोई देवी देवता का उनका प्रवेश जान ही नहीं सकते, उनके द्वारा बनाया हुआ ये परम धर्म भागवत धर्म है, उस रूलिंग को वो करते हैं। हम तो केवल पापियों के पल्ले पड़े हैं, उनके केस डिसाइड करते हैं, और परम धर्म अनुग्रह होगा क्या? इसलिए यहाँ एक किताब चलता नहीं है, यहाँ उनका डिमांड नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल पापियों का विचार होता है। लेकिन जहाँ पापियों के प्रवेश नहीं है, जहाँ केवल पुण्यात्मा, जहाँ केवल भक्तगण जाते हैं, वहाँ पर तो परम धर्म के काम चल रहा है, और वो उन्हीं के द्वारा निर्णित धर्म है, उन परम सर्वोच्च अधिकारी के द्वारा निर्णित निर्धारित किया गया धर्म है। बोले फिर उस धर्म का, बोले इस धर्म का बारे में जानकारी आप बता रहे हैं, इस धर्म का जानकारी मैं तो बता, हम लोग कोई जानते ही नहीं। जो केवल उनके निज जन है, उनकी कृपा से कुछ बहुत को जानते हैं, नहीं तो ये निश्चित बात है, यहां तक कि ब्रह्मा शंकर पर्यंत कोई नहीं जानते, उनको जान ही नहीं पाए, नहीं जान सकते। बोले जानेंगे नहीं तो फिर परम धर्म का पालन कैसे होगा? पालन वही करवाते हैं, उस जो परम अधिकारी है उनके सत्ता के बारे में बताता हूँ, सुन लो। उनका किस प्रकार, कहाँ रहते हैं, कहाँ बैठते हैं, बोले कहाँ रहते हैं, बोले चर अचर दोनों जगत में, चिद और अचिद, ये जो जड़ जगत है उसके परिचेतन जगत है, दोनों जगत के संपूर्ण सत्ता में ऐसे वो विद्यमान है, वो जो परम अधिकारी। जैसे जमराज ने उदाहरण दिया, जैसे कोई वस्त्र है, चाहे धोती लो या साड़ी लो, वो धोती या साड़ी जो वस्त्र है वो कैसे बना है, उनका असली जो इंग्रेडिएंट्स क्या है, धागा है, सूत्र है ना, एक सीधा एक टेढ़ा, एक है ना, नहीं उसको बोलते आड़ा टेढ़ा है ना, ओत प्रोत, ओत प्रेत केवल धागा को ऐसे ऐसे उत्प्रेत करके साड़ी बना, कपड़ा बना, धोती बना, सब बना, उसमें और कुछ मटेरियल है ही नहीं, एक ही मटेरियल है धागा, अलग अलग डिजाइन में है। लेकिन कोई धागा देखता है, अरे ये मेरे साड़ी, ये मेरे कुर्ता, मेरे धोती, कोई धागा नहीं दिखते, लेकिन धागा के अलावा और कुछ है ही नहीं, केवल धागा ही धागा है, भले काला पीला नीला कलर कैसे हो, डिजाइन कैसे हो, लेकिन है ही तो केवल धागा, वस्त्र में और कुछ है ही नहीं। तो इसलिए वस्त्र में केवल मात्र धागा है, कलर अलग अलग हो सकता है, साइज अलग अलग डिजाइन हो सकता है, केवल धागा ही है, वस्त्र में और कुछ है ही नहीं चीज। तो समुच्च जड़ जगत चेतन जगत में उनके अलावा और कोई सत्ता है ही नहीं, केवल वही ही विद्यमान है, लेकिन कोई नहीं दिख पाता, पहचान नहीं पाता। जैसे हम लोग सब पहनते हैं, बोले मेरा कपड़ा, मेरा उत्तरी, मेरा धोती, मेरा कुर्ता, कोई नहीं बोलता मेरे धागा ना, सब जानते हैं, समझते देखते हैं, लेकिन इतने बुद्धू हैं लेकिन नहीं जानता। बोले इस प्रकार इन परम अधिकारी भगवान संपूर्ण चीज अचित जगत में ऐसे विद्यमान है, हर एक स्थान पर विद्यमान है, सभी उनको देखते हुए भी पश्यत भी न पश्यति, देख कर भी, जान कर भी समझ नहीं पाते, देख कर भी देख नहीं पाते, मान कर भी मान नहीं पाते। बोले वो कैसे, ये क्या, इसी किसी बात कहते हैं, इसी किसी संभव है। तो जमराज ने कि बहुत अच्छा उदाहरण बताया उनके, बोले देखो बेटे आपके हाथ पैर सुन है, बोले हाथ देख सकता है, बोले हाथ कोई चीज को पकड़ने के लिए जाता है, कैसे जाता है, इसको मैं पकड़ लूं, पैर जब चलता है, बोले पैर उठ के चलता है, बोले ना आपको अभी अज्ञान है, आप जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, जब तक आंख खुला है, आंख नहीं देखता तब तक पैर हाथ उठेगा ही नहीं, डिसीजन आंख से देता है, हाँ ये ठीक है पर डालो, वो पैर उठे के डालेगा, अगर सामने कोई गड्ढा होगा, कोई चीज होगा, पैर जाएगा ना, बिल्कुल नहीं जाएगा, ये आगे क्या है, ठीक है कि नहीं, आंख देखता है, और आंख को हाथ पैर को देख सकता, शरीर के कोई अंग आंख को नहीं देख सकता, लेकिन उनके सारे कार्य आंख के हिसाब से होता है, आंख देख करके डिसाइड करता है, और पकड़ने लायक है पकड़ो उसको, वे चल यहाँ चलो, यहाँ जाओ, ये करो, वो निर्णय ये देता, लेकिन वो कोई नहीं देखे, उनको जानते नहीं,
वही सही
ठीक इसी प्रकार भगवान प्रत्येक अणु कण में परमात्मा रूप में प्रत्येक प्राणियों के अंदर बैठ करके सभी को चलायमान करता है चलाता है, लेकिन कोई नहीं समझ पाता, कोई नहीं समझ पाता उसको, लेकिन करता वही है और कोई नहीं करता, वही सबके अंदर बैठ के कराता है। बोले बोलते भी हैं ईश्वर हृदय सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानाम जंत्र रूढ़ानी माया। जैसे जंत्र को एक ड्राइवर परिचालित करता है, गाड़ी चलाता है, इतने बड़े गाड़ी ड्राइवर ना हो गाड़ी चले ना चलाता है, ठीक एक जंत्र है, एक जंत्र ही इनको चलाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान हृदय देश में बैठ करके ड्राइवर की तरह सारे चलाते हैं अपने माया शक्ति की तरह से, तो वो चलाते हैं, हम देख नहीं पाते, अज्ञानी है हमारा ज्ञान, लेकिन वही है, उनके बिना कुछ नहीं, परम नियंता के रूप में परम अधिकारी रूप में है, और कहाँ नहीं है, कोई उनको देखते हुए भी देख नहीं पाते, जानते हुए जान नहीं पाते, पश्यते कि न पश्यते ना। आज ही मैंने सुबह एक बात कह रहा था, बड़े अच्छा जचा लगा मुझे ये घटना कि कई स्त्रियां जा रही थी, उसमें एक अविवाहित स्त्री थी जिनका विवाह अभी तय हुआ था, तो उनको जो उनके साथ विवाह करने वाले थे तो उनके घर से उनको एक नोज निगे नथुन मिला, नथनी नथनी मिला था, जैसे रिंग सेरेमनी देते ना भेंट में, उनको मिला था और सोने का था, बड़े डिजाइनदार था, तो अपने सहेलियों से साथ हो जाती थी और घंटों तक उसी का चर्चा चली थी, देखा मेरे लिए केवल ला है, इतने अच्छा है, इतने कीमती है, मुझे खास ऐसे बनाए, ऐसे है, ऐसे घंटों उसी के चर्चा चल रहा था ऐसे करके, इतने बढ़िया है मेरे लिए, मेरे फोटो भी लिए होंगे, मैं पहनी हूँ फोटो ले देखे ऐसे। अब एक संत थे वो सुने, बोले अरे कुछ नहीं, घंटों तक ही नोज रिंग के चर्चा चल रहा है, तो जाकर के उनको बोले बोले अरे पगली माता जी, आपके होने वाले पति ने वो पद है, कबीर जी का कहना है, नथनी दीनी यार ने उसके चर्चा बार बार, जो नाक दिया करतार ने उसको दिया विसार, ये एक नोज रिंग दिया उसके लिए घंटों चर्चा चल रहा है, जो तेरा नाक दिया उसको तो सोचता नहीं, और नाक ना होता नोज रिंग होता कह क्यों होता, और नाक दिया तभी तो नाक में पहनता है, कान दिया तब तो कान में फूल कुंडल डालता है, वो कान ही नहीं होता तो क्या करता तुम्हें, उनके बारे में नहीं सोचता जो कान नाक तुझे दिया, और वो दे दिया करके उनके लिए इतनी चर्चा, ये सभी हम जानते हैं, जान कर वो पश्यदपि न पश्यति, देख कर भी नहीं देखते, आप इतने माताएं बैठे हैं सभी को पक्का पता है कि जब एक छोटे बच्चे पैदा होता है, संतान पैदा होता है तो रोता है, बोल नहीं सकता, कुछ भाषा भी नहीं बोल सकता, किस लिए रोता है बता नहीं सकता, और हम है माँ लेकिन हमको पता नहीं क्यों रो रहा है हमको क्या पता है रो के रहा है, लेकिन उनके लिए क्या खाने के उपयुक्त वस्तु है, क्या देंगे उसको, चावल खिलाएंगे, रोटी खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, फल खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे पता नहीं, हम भी अज्ञानी है जानते नहीं, वो भी असमर्थ है बोल नहीं पाता ज्ञानी है, लेकिन जिन्होंने उनको भेजा उन ईश्वर ने क्या व्यवस्था किए है, ठीक उनके माँ की बख्य में स्तन की व्यवस्था किए हैं, वो स्तन से दूध की व्यवस्था किए हैं, जो कंपोजिशन का फूड उनको जरूरत होता है, बिल्कुल विफिटिंग कंपोजिशन विथ बटल निपल एंड मिल्क रेडी इन प्रॉपर प्लेस। हम लोग प्रत्येक मातृस्तन पी करके बड़े हुए हैं, लेकिन ना माँ कभी सोची ना हम कभी सोचे ये बंदा कैसे कहाँ से आया, माँ तो कोई इंजेक्शन दूध का नहीं लेती, कोई दूध पीती भी नहीं है, उन पे दूध कहाँ से बना, हम भी जो राइस दाल सब्जी खाते हैं हम तो दूध नहीं बनता, वो भी वही खाती है, दूध कहाँ से बना, कौन बनाया, और वो भी पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, उसी समय में, कोई सोचा आप लोग ने? यही हमारे भगवत ने सब दिया, ये सोचना लायक बात है। एक जीव को भगवान जब भेज रहे हैं वो जानते, मैं उसको भेजा हूँ बेचारा परेशान होगा, क्या खाएगा, बोल ही नहीं पाएगा, उनके लायक खाना तो कुछ है ही नहीं दुनिया में, क्या खाएगा, दांत भी नहीं उसका, डाइजेशन भी नहीं कर पाएगा, तो उनके लायक क्या खाएगा, किस प्रकार कैसे रखूं, एडवांस बुकिंग करके व्यवस्था किए, इतने कृपालु कोई हो सकता, एडवांस अरेंजमेंट। वो जीवात्मा प्रकट होने से पहले जहां से प्रकट होगा वहां पे उनके बक्षस्थल में बिल्कुल स्तनाग्र में दुग्ध भर करके उनके लिए व्यवस्था करके रखते हैं कि वहीं जाएगा पीकर। ये कितने पक्का व्यवस्था है, कितने समुचित व्यवस्था है, सोचने लायक बात। आज तक भी करते हैं कितने पशु पक्षियों के, लेकिन कोई नहीं सोचता, यही है भगवान, नेपथ्य में रह करके सब कुछ करते हैं, सबके पर्दा के पीछे सब कुछ वही करते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता समझ पाता। हम अगर ऑफिस में जाते होंगे, अब बस फेल हो गए, जो ऑफिस बस था चला गया और हमको 2 किलोमीटर चल के जाना था, अब क्या करूं, लेट हो जाएगा ऑफिस से पहुंचने में, ऑटो नहीं मिल रहा है भाई, बस फेल हो गया, कोई व्यक्ति बाइक में जा रहा था आपको लिफ्ट में ले लिया, अगर ऑटो में जाते 8 रुपया देना पड़ता, 1.5 किलोमीटर का दूर था, अभी चल के जा सकते थे, लेकिन बीच में बाइक के बैठा के ले लिया, तो जब बाइक से आप ऑफिस के सामने उतरेंगे उसको क्या कहेंगे, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत मेहरबानी है, आपने कहेंगे ना, 8 रुपया के लिए 80 बार कहेंगे, आज नहीं जब जब भेंट होगा जहां भी, साहब आप मेहरबानी है, आपने मदद की, थोड़ी सी 8 रुपया के मदद के लिए कितनी बार बोलेंगे, तो कोई कीमत का नहीं है, सोचने लायक बात है। हम जो यहां बैठे हैं अभी इस जमीन के ऊपर, ये किसका है, किसी का है, कोई बोलेगा ये हमारे बेवकूफी है, हम अपने कागजात करके लेते हैं, मेरा है मेरा है, नाप चुप करते हैं, अरे मूर्ख कहीं के तेरे जैसा हजारों नाप चुप करते करते बीत गए, वो ना तो किसी का हुआ ना होगा ना हो सकता, ये तो उन्हीं का है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, ये तो उनके पत्नी है, दूसरे किसे कोई उनको ले सकता, हम तो मूर्ख है, हमारा हमारा करते हैं, अरे दूसरे की वाइफ है, भगवान की पत्नी है, धरती तो छोड़ो, ये जो सांस लेकर के हम जीते हैं, जिनके बगैर तो 2 मिनट राम नाम हो जाएगा, ये किसका कौन सा प्रोडक्शन है, कोई इंडस्ट्री, कोई कैपिटलिस्ट की, कोई कहां से बंबई से कोई प्रोड्यूस कहां से होता है, किसका है ये, पानी पीते हैं ये किसका है, आग जलाते हैं किसका, ये खिती जल पावक गगन समीरा है किसका, कृपा करके दिया है, अरे केवल दिया नहीं उसको कैसे बना करे इस्तेमाल करे वो भी दिया, अभी तक कोई वैज्ञानिक नहीं सोचते हैं, इतने बड़े बड़े फैक्ट्री बनाते हैं, सबसे हाईटेक एडवर्टाइजमेंट मॉडर्नाइजेशन है, बड़े बड़े शिल्प इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जो बलता है नट बोल्ट सब, सब जो सब जंत्र आदि बनता है, जंत्र खा करके बचेंगे, जो खाते हैं अनाज वो कोई इंडस्ट्री से बनता है क्या, कोई फैक्ट्री प्रोडक्ट है क्या, एक दाना गेहूं का डालो 2-2.5 महीना में 100 दाना बन करके आता है, कैसे, कौन करता है उसको, हम जन्म से अभी तक खाते और खाते ही रहेंगे, कभी सोचते नहीं है कि हाउ कैन इट पॉसिबल, कैसे हो रहा है। तो जमराज उनके दूतों को बोलते हैं कि रे बेटो आप देखें सुने जाने, आप जैसे हजारों हजार लोग ऐसे मूर्ख सब देख समझ नहीं जानते, सभी के साथ है हमेशा है, उनके बिना तो एक क्षण भी कोई जी नहीं सकता, हम भी ये छोटी सी एरिया में अब कितने लाइट लगाए, 2 हैलोजन इधर, 4 हैलोजन इधर, इधर कितना, इधर कितना लगा, फिर भी अंधकार, उधर लाइट पक्का नहीं, पूरा नहीं है। कितने बड़े 60x70 की जगह है घर का, इतने में इतने लाइट लगे घर में, और उन प्रभु ने एक लाइट टांग दिया है जिनका कनेक्शन होल्डर तार प्लग तो दिखाई नहीं पड़ता, अभी तक कोई नहीं देखा है। एक बल्ब टांग दिया, वो बल्ब कभी फ्यूज ही नहीं होता, टाइम पर जलता है, टाइम पर बंद होता है, और पूरे समुच्चय संसार में सभी जगह में लाइट, ऐसे नहीं कि केवल यहाँ होता है ना, दो बल्ब है थोड़ी, एक ही बल्ब ऐसे फिटिंग किया, पता नहीं क्या, अभी तक जितने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने सारे का दिमाग फट जाए, सोच ही नहीं पाएंगे कैसे फिटिंग किया यार। अरे अमेरिका में देखो मेरे ऊपर ही ढूंढा, रशिया में देखो मेरे ऊपर, जापान, जर्मन, इंडिया मेरे ऊपर झूल रहा है, सभी के सर के ऊपर झूल रहा है, एक ही बाल में, और एक ही बाल में थोड़ा सा घुमाता है, पूरी गर्मी गर्मी ऐसी चलाओ, थोड़ा सा इधर कर दे मर गए, बहुत ठंडा पड़ रहा है, एक बाल क्या व्यवस्था है उनके समुचित। अगर वो ना इस व्यवस्था करते तो हमारा स्थिति रहता, एक दंड क्षण तक भी हमारा स्थिति नहीं हो सकता उनके मदद के बिना। कितने कितने बार हर सेकंड में उनका मदद से हम जीते हैं, तो उनको कितने एहसान करना चाहिए, कितने बार थैंक यू करना चाहिए उनका, थोड़ा सोचो। जो 8 रुपया का आपके लिफ्ट दे दिया, उनको 80 बार थैंक यू करते हैं, सर थैंक यू सर, तो उनको कितने बार कहना चाहिए। अगर जन्म होते से मरते दम तक प्रत्येक क्षण ही उनको प्रणाम करते रहो, तभी कम पड़ेगा, कम ही पड़ेगा, कम ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग अभी भी इतने महामूर्ख है, बोलते हैं कि हरे कृष्ण करने से क्या होगा, मंदिर जाने से क्या होता है, परोपकार करो, किसी के मन में दुख मत दो, ये सब नंबर वन बेईमानी है, बेईमान। जो एक एक क्षण में जिनके मदद से बचे हैं उनको याद नहीं करना चाहते, यही छोटा मोटा बल लगाकर इलेक्ट्रिक बिल टाइम पर भरना पड़ता है, अगर वो बिल भेज दे तो कोस्तानी अमल से तो अभी तक नहीं दिया है, केवल आज ही इसी लाइफ का बिल भेज दे तो दे पाएंगे। आप बोलेंगे वो बिल भेजते नहीं, आपको पता है, आप पूछा तो भेजा नहीं, उन्होंने सारी व्यवस्था करके यही आशा करते हैं कि अरे मैं तुरे से इतने सब कुछ तेरे लिए किया हूं, कर रहा हूं, करते रहूंगा, सर क्या मदद करूं, बस तू क्या मदद करेगा, बस इतना ही मेरे लिए, कैन यू हेल्प मी दिस ओनली। वो चाहता है, आशा करके बैठा है, बोल रहा है उन्होंने, जिन्होंने हमारे लिए ये व्यवस्था किए हैं, कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, वो हमसे ये मांग कर रहे हैं, खुल करके मांग कर रहे हैं, मन मना भव मद भक्त भव मद याजी मद नमस्कुरु, ये 4 ही बिल इनका है, कोई पैसा कौड़ी नहीं मांगते, तो मेरा मन मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बन, मुझे प्रणाम कर, मुझे पूजा कर। और हम बोलेंगे पूजा क्यों करो, मंदिर क्यों जाओ, हरे कृष्ण क्यों जप करे, भाई बान नंबर वन कहीं के, इसीलिए जमराज बोलते उन्हीं को पकड़ के लाओ, बदमाश, उनके ट्रीटमेंट में ही करूंगा। हाँ, लेकिन जो किसी भी प्रकार से गलती में भी नारायण बोल दिया, उनका पास मत जाओ। तो इस प्रकार जमराज ने अपने दूतों को भगवान की सत्ता के बारे में ज्ञान देने लगे, जो परम सत्ता है, जो परम नियंता है, जो भागवत धर्म के निर्णायक है, उनके बारे में जानकार दिए। उनको सुन करके तो धड़ बैठ गए, बोले बाप रे बाप, ये हमको बताया नहीं था तक इन्फॉर्मेशन। बोले सर उसका बारे में कोई लिटरेचर है, हम भी उसको पढ़ लें। कोई ऐसे केस होगा, बोले उसका लिटरेचर तो प्रिंट ही नहीं हुआ। बोले सर फिर कैसे चलेगा ना। बोले अरे बेटो मैं आपको बताता हूं, सुनो, उस धर्म के बारे में जानकार केवल 12 ही व्यक्ति हैं अभी तक रिकॉर्ड में, 12 लोग जानते हैं उनके बारे में, वो भी पढ़े लिखे नहीं, उन्हीं की कृपा से उन्होंने जितना जानकारी दिया है इतनी जाने हैं, बाकी तक उपाय नहीं जानकर। बोले कौन है? स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु कुमारो जनको भीष्म बड़ी बया सकिर वयम। ये 12 लोग है वय, मतलब मैं उनके अंदर हूँ, मुझे मिला करके बाकी ये जो 11 लोग बताया, इन लोगों ने ये द्वादश इति महाजन, ये 12 महाजन है, उनके निज जन है, वो जानते हैं उनके बारी की नीति को, वो उनको कुछ मालूम करा दिए वो जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता, बाकी कोई नहीं जानता, जानेंगे। तो इसलिए मेरे दूतों, अब मैं आपको फाइनल डिसीजन बताता हूँ कि अभी तक आप जहाँ जहाँ जाते थे पकड़ कर लाते थे, एक्चुअली आपको मैं केवल पापियों के लिए नियुक्त किया था, लेकिन गलती हुआ कि पापी निर्णय करने में आपको ये गड़बड़ आज हुआ, तो मैंने आपको ये शिक्षा नहीं दिया था, अभी ये शिक्षा देता हूँ। ये ध्यान रखो कि वो जो प्रभु हैं, जो प्रत्येक स्थान में प्रत्येक सत्ता में हमेशा विद्यमान है, वही परम नियामक, उनका जो उन्मुख, जो उनकी भक्ति करते हैं, जो उनको सेवा करते हैं, ऐसे भक्तजन परमहंसगण उनके चरणार बिंद के मकरंद रस पी करके बड़े उन्मत्त रहते हैं, उनको तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो महावैराग्य परमहंसगण है, और उन तो पाप करते ही नहीं, तो आप तो उनको बस जाएंगे ही नहीं, तो उनके बात तो छोड़ दो, क्योंकि पाप करते ही नहीं है, उनके द्वारा पाप अगर हो भी जाता तो उसको ऐसे ही माफ उड़ जाता है, उनकी बात ही छोड़ो, आप तो कभी उनके पास जाएंगे नहीं, आप एक केस में से पड़ेंगे नहीं। तो बाकी ये भी ध्यान रखो, उनके पास और भी लोग हैं जो बेचारे इस स्थिति पे इतने बड़े परमहंस तो नहीं बन पाए, लेकिन इन परमहंस भक्तों का चरणाश्रय करके, उनके चरण में आश्रय लेकर के भगवत उन्मुख हो चुके हैं, भगवान की ओर मुंह किए हैं, और भगवान को प्रणाम करना, उनके नाम करना, उनके ग्रंथ पढ़ना, उनके लीला नाम के बारे में सुनना, इस प्रकार जो करते हैं, इस प्रकार करने के द्वारा उनके जो अंतकरण, उनके चित्त, उनके हृदय मन शुद्ध होता चला जा रहा है, शुद्ध होते चला जा रहा है, और उससे हट नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे भी जो हैं उनके पास भी मत जाना। अरे उनके पास क्या जाना, अभी तो आप करंट केस में देख करके आए, मैं क्या बताऊं, अमेंडमेंट सब करना पड़ेगा अभी। रे दूतो, अभी आज के केस तो आप देखे, ये अजामिल ने नाम उच्चारण मात्र से क्या महिमा आप देख लिए, वो कोई शुद्ध नाम थोड़ी लिया था, अपने बेटे को बुला रहा था, भगवत नाम वो जानता नहीं था। संकेत्य में अशुद्ध नाम तो नहीं, नाम का आभास था, नाम के आभास मात्र में, एक बार नाम के आभास में क्या परिणाम आप देख लिए, अजामिल जैसे 80 साल के महापापी, करोड़ पाप करने वाला, एक मिनट में खुल दिया गया, मेरे अर्डर को अमान्य कर दिया गया, आपके हाथ से छुड़ा दिया गया, धक्का मार कर निकाल दिए, खोल दिए उसको, केवल पाप से मुक्त नहीं हुआ बेटो, वो तो परम गति को भी प्राप्त कर गया, मुख्य प्राप्त, केवल एक नाम के उच्चारण मात्र, वो भी पूरा नहीं, और आभास नाम था, कोई शुद्ध नाम भी नहीं था। नाम उच्चारण महात्म्यम, हरिर नाम के उच्चारण का ये महात्म्य, इतने महामहिमा आज आप साक्षात अपने आंख से देख करके आए, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि, और जो उनको बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ उनके नाम जपादि करते हैं, उनका क्या है, उनके पास तो जाना क्या, देखना भी नहीं भूल से, देखना नहीं उनके। जमराज ने हेवी वार्निंग दिया, बोले देखो आज तो आप आ गए, मैं बताता हूँ, जिन्होंने भगवत शरण में रहते हैं तो भगवान के दूत, भगवान के आयुध उनके रक्षा करता है, उनके गदा भी उनको रक्षा करता है। आज तो कैसे आपका भाग्य जोर था बच के आए, अगर फिर कभी पल्ले पड़ते ऐसे पिटाई पड़ेगा, चकनाचूर कर देंगे आपको। मैं क्या, आप नहीं, मैं नहीं, ब्रह्मादेव कोई नहीं पीठे पड़ेंगे उनका, वो सबसे हायर अथॉरिटी है। जैसे वो मेरे मालिक है, ऐसे उनका दूत भी आपके मालिक है, हायर अथॉरिटी से। तो यह हमारा नियम नहीं चलेगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बी केयरफुल। जो लोग किसी भी प्रकार से भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवत नाम आदि करते हैं, उनके होते हैं, तो उनके पास इस प्रकार कभी जाना नहीं, भटकना भूलने जाएंगे नहीं। आप तो केवल उन्हीं के पास जाओ, आप ड्यूटी करो, किन के पास सर जाएं फिर ना, उनके पास जाओ जिन्होंने भगवान नाम रूप गुण सुनना नहीं चाहते हैं, कभी जप नहीं करना चाहते हैं, उच्चारण नहीं करना चाहते हैं, मंदिर जाना नहीं चाहते हैं, जाकर भगवान को प्रणाम नहीं किए, जिसका जीवा में भगवत नाम उच्चारण नहीं होता, जिनका सर भगवत विग्रह के सामने झुकता नहीं, जिन्होंने जिनका कान में भगवत कथा घुसता नहीं, ऐसे को पकड़ करके लाओ, उनका शास्त्र विधान करूँगा, बाकी उनको नहीं। ये जुरिस्डिक्शन जमनराज ने फाइल बताए, तब ये बात को समझा करके अब जमदूत ये पूरी हिस्ट्री, भगवत महिमा, भागवत धर्म के निर्णय आपने अधिकारी स्वयं जमराज के द्वारा सुन करके ओ शांत होकर बैठ गए। तो सारी ये बात ना हूँ, पहले ना मैं क्या करूँ, ऐसा केस हुआ नहीं था अब तक। तब ऐसे कह करके जमराज ने दोबारा बोले, देखो आज जो केस किया आपने, मैं भी बड़े लज्जित हूँ, क्योंकि आज जो विष्णुदूत के सामने आप जो पंगा पड़ गया, उनके साथ युक्ति किया, ये तो अपराध है, ये वैष्णव थे, ये वैष्णव अपराध हो गया, अनजाने में किया आपने किया तो अपराध, क्योंकि आप लोग मेरे दूत है, मेरे नौकर है, इसलिए जो सेवक की गलती है वो गलती किसको जाएगा, मालिक क्यों होता है, तो मैं आपका मालिक हूँ, तो मेरा ही अपराध हो गया, मैंने आपको पहले नहीं कहा, तो मेरा अपराध हो गया, तो इसलिए अपराध क्षमा याचना कर। तो जमराज अपने दूतों के साथ लेकर के भगवान को प्रार्थना करने लगे, बोले हे प्रभु, गलती में जो भी हो मैं नहीं बता पाया था, ये मेरे दूतों हैं, अब जाकर के इसे गड़बड़ किए, आप बड़े कृपाल हुए, माफ़ कर दीजिए, मैं उनको शिक्षा दिया और ये गलती नहीं करेंगे, माफ़ कर दीजिए, क्षमा प्रार्थना किए, ऐसे क्षमा प्रार्थना किए। और जमदूत बिल्कुल सुन करके वो चक्का देख रहे थे, बोले बाप रे बाप, ये सब गड़बड़ हो गया सुन करके। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, आप तो देख ही लिए ये घटना, एक नाम आभास के उच्चारण मात्र का क्या परिणाम हुआ, सख्या तभी आपने देखे, जमराज चौंक गए, जमदूत चौंक गए, क्या क्या हो गया, पाप से मुक्ति, परम धाम की प्राप्ति, सब कुछ हो गया, और हृदय सुधन वहीं के वहीं हो गया, इतने पाप होते हुए भी सब कुछ हो गया। ये है भगवत नाम की महामहिमा, ये जो परम रहस्यमय बात मुझे अगस्त जी स्वयं जब मलय पर्वत में बैठ करके भगवान पूजा कर रहे थे, मैं उनका प्रश्न गया था, ये स्टोरी मुझे वो बताए थे, ये सत्य स्टोरी मुझे बताते, मैं उनसे सुना था, इसको याद रखना, ये महामहिमा भगवत नाम कीर्तन का। इति भगवत नाम उच्चारण महिमा, भगवत नाम उच्चारण, एक बार डर के मारे किसी विवश होकर उच्चारण किया था, ये प्रभाव परिणाम था उसका। इसे बताकर बोलते हैं कि अगर ये तीन अध्याय जो अजामिल के प्रसंग है, किस प्रकार अजामिल के पतन हुआ, किस प्रकार विष्णुदूत और जमदूत का बहस हुआ, और किस प्रकार साक्षात जमराज के द्वारा भागवत धर्म के निर्णय किया गया, भागवत नाम का महिमा वर्णन किया गया, इस प्रसंग को जो सुनता है वो भी भगवत कृपा को प्राप्त कर लेता है, वो भी प्राप्त कर लेता है। ये वरदान दे करके सुखदेव गोस्वामी इस नाम महिमा को रखते हैं। तो मुझे आपके अधिकारीगण भी अनुरोध किए थे कि कुछ समय श्री जगन्नाथ भगवान के नाम पर आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वह जिनका नाम पर है उनके नाम नहीं गाएंगे तो बदनाम होगा ना, भाई उनके नाम पर खा रहे, उनके नाम पर आए बैठे बोले और उनकी चर्चा ही नहीं, ये तो ठीक नहीं होगा। तो दोष मुक्त होने के लिए कुछ उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसी में जमराज ने जो बता रहे हैं अपने दूतों को, बोले अरे दूतों ये जो परम नियंता है वो बोले सारे वो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, वो देखते नहीं। बोले कंट्रोल समुच्चय अनंत कोटि ब्रह्मांड को, समुच्चय जगत को, अनगिनत जगत को ऐसे कंट्रोल किया है जैसे आप लोग बम्बई में बैल होते हैं, बैल सांड, सांड को एक जानते ना उसके नाक में बीच में एक छेद करके एक कड़ा डालते हैं और एक रस्सी डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, नाथ ना, नाथ बोलते हैं ना, नाथ दिए उसको। और नाथ दो कितने बलशाली बड़े तगड़ा सांड हो उसको नाथ दो, कोई छोटे बच्चे भी रस्सी लेकर जाए ओबिडेंट उनके पीछे पीछे जाएगा चुपचाप, है ना। नहीं नाथने से पहले बहुत उत्पात मचा गया, एक बार नाथ लो चुप बिल्कुल ओबिडेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार समग्र जगत को नाथ डाले हैं, सबके नाक में रस्सी डाले हैं वेदवाणी के द्वारा, इसलिए उनका नाम है जगतनाथ। सारे जगत को ऐसे नाथे हैं जैसे बैल के नाक के अंदर कड़ा डाल करके नाथ देते हैं, इसलिए हम सभी को नाथे हुए हैं। वो हमको दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन मेरी डोरी तेरे हाथ, सबके डोरी उनके हाथ में, पूरे समुच्चय संसार के अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव को सबको नाथ करके हाथ में डोरी लेकर बैठे, हाथ खुलते नहीं इसलिए हाथ आधा, क्या करना है मेरे हाथ में तो सब है, एक झिंका मारूंगा सर 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 नाक टूट जाएगा, भागे आएंगे जाएंगे क्या। समुच्चय डोरी हाथ में लेकर बैठे हैं, सारे जगत को नाथे हुए हैं, इसलिए नाम पड़ा जगतनाथ, सारे जगत को नाथे, इस प्रकार नाथ करके बैठे हैं। और उन्हीं के द्वारा संपूर्ण जगत के जागतिक परमार्थिक लौकिक सारे नियम को सारे परिपालन चलाते हैं, बैठे बैठे कुछ नहीं करते हैं, पैर है नहीं चलेंगे क्या। अपाणि पादम जवन गृहीता, उपनिषद में कहा गया वो परमात्मा ऐसे है जिनका पैर नहीं लेकिन खूब चलता है, हाथ नहीं कि खुद पकड़ता है, आंख नहीं खुद देखता है, ऐसे कान नहीं खूब सुनता है। हमारे प्रभु ये उनके भी कान नहीं है, देखो जगन्नाथ जी के शरीर की विशेषता है आंख बड़े बड़े है कान है ही नहीं ना। देखते हैं लेकिन उनके आंख है, आप लोग भी सब आंख है, आपके आंख में उनके आंख में क्या अंतर है देखते हैं, पता लगाए आप लोग क्या अंतर है। हाँ? आपके आंख के आईलिड है, पलक है, उनके आंख में कवर नहीं है, तो मतलब ये सोते ही नहीं है। कोई आदमी सोता है क्या प्रमाण है, आंख बंद हो तब तो सोया माना जाएगा ना, आंख खुला तो सोया थोड़ी, आंख खुला है उसका, चोर भी डर जाएगा बोले आंख खुला है उसका। लेकिन हमारे प्रभु आंख का कवर है ही नहीं, बंद कैसे होगा, वो रात को सो कैसे सकते हैं, तो आंख बंद ही नहीं होगा, तो इसलिए सोते नहीं। आप लोग को शायद पता होगा कि नहीं, हम लोग भारतवर्ष में जितने मंदिर में जाते हैं, जो भी भगवत विग्रह के दर्शन करने जाते हैं, तो सुबह उठते हैं मंगल आरती होता है, उसके बाद में उनको स्नान टान करा करके नूतन वस्त्र माला आदि बहुत श्रृंगार करके एक श्रृंगार दर्शन होता है, उनको डिटी ग्रीटिंग्स कहते हैं, उन्हें श्रृंगार दर्शन कहते हैं, जो कोई सवा सात साढ़े सात बजे करते हैं, जो पब्लिक आते हैं देखते हैं, भव्य रूप दर्शन होता है ठाकुर जी का, है ना। नहीं प्राय मंदिर में इसे अलंकृत करके नूतन पाट वस्त्र परिधान पहना करके श्रृंगार करके दर्शन कराते हैं, और जगन्नाथ भगवान भी मंदिर में विराजमान, उनका भी श्रृंगार दर्शन होता है, उनका श्रृंगार तो बड़ा श्रृंगार है, उड़ीसा में कहा जाता है बड़ा श्रृंगार, दी ग्रेट श्रृंगार, बड़ा श्रृंगार शोभा, बड़ा श्रृंगार वैसा हे राधा, इतनी बड़ी शोभा बड़ा श्रृंगार वैसा। उनका बड़ा श्रृंगार कब होता है मालूम है, श्रृंगार दर्शन जगन्नाथ जी का कब होता है, किन्ने देखें आप लोग तो शायद देखे भी नहीं होंगे, देखे नहीं है तो अगर नेक्स्ट टाइम को पूरी जाएंगे मैं टाइम बता देता हूँ देख लेना, उनके बड़े सिंगर बाकी दिन भर दिन में नहीं होते हैं, दिन में श्रृंगार बड़ श्रृंगार उनका श्रृंगार आरती दिन में नहीं होता, रात को 12 बजे जाना एवरी डे मिडनाइट में। मंदिर में तभी 2-4-5 कोई लोग होंगे, अरे पब्लिक भीड़ जब आता है तभी तो श्रृंगार होना चाहिए, तब तो दर्शन करेंगे पब्लिक, वो पब्लिक के लिए थोड़ी श्रृंगार करते हैं। हजारों लाखों लोग भीड़ आते हैं उनके लिए श्रृंगार उनके लिए नहीं, वो ऐसे कम से कम बैठे रहे। विशेष श्रृंगार होते हैं, बड़ा श्रृंगार वेश होता है मिड नाइट में, सोने से पहले, शयन आरती से पहले होगा, ये याद रखना। जब भी जाएंगे कोई मंदिर में कोई गैस पर जाने जगन्नाथ जी के शयन आरती पहुड़ो कब होगा पूछना, पहुड़ो शयन आरती, ठीक शयन आरती से पहले विशेष श्रृंगार होता है। अब ये दृश्य तो बड़े दुर्लभ दृश्य है जगन्नाथ जी की, बिल्कुल सुगंधित तुलसी और सफेद फूल में पद्मा आदि मालव, इतने विशेष श्रृंगार होता है, लेकिन कोई नहीं देखने वाला होगा। बोले भले काहे के इतने विशेष श्रृंगार होता है, पब्लिक तो कोई देखने वाले है ही नहीं। ये हमारे ठाकुर जी की अद्भुत लीला है, बोले मुझे कौन पब्लिक को दिखाना है, ये उड़ पक देखेंगे क्या, उनका आंख है देखने के लिए, उनको मैं देखता हूँ, वो क्या मुझे देखेंगे। हम बोलते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भक्त है, तेरा नयन है क्या, 2 मिनट में 50 बार पक 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 करता रहता है, तो क्या देखेंगे। तो इसलिए नयन तो उनका है, वो नयन वाले ठाकुर है, बड़े बड़े चका नयन है, उनके सामने हम आ जाए, उनके नयन के पथ से पथिक हो जाए, हम हो सकते हैं, वो क्या हो, हम क्या हो। तो नयन वाले, तो उनके नयन ऐसा है, तो इसीलिए वो रात को सो नहीं पाते हैं कि आंख बंद नहीं होगा उनका, तो इसीलिए सोने से पहले उनका विशेष श्रृंगार करते हैं। सच बताऊं, आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं जितने नहीं भी बैठे हैं, कभी कभी आपने बढ़िया सा नए वस्त्र और बिल्कुल प्रेस करके साफ करके इतर डाल करके बिल्कुल सज धज करके सेंटिंग पेंटिंग होकर निकलते हैं, कब ऐसा करते हैं, आपके जन्मदिन हो या कोई स्पेशल दिन हो, कोई उत्सव करते ना ऐसा आपने खुद सजा कर। अगर आप इससे बढ़िया पहनते तो किसके लिए पहनते, कोई हमारा सेल्फी खींचे फोटो खींचे या कोई देखे कुछ बोले, और कोई नहीं देखेंगे आप पहनेंगे, बोले यार गमछा पहन कर था ठीक था यार, कोई देखते नहीं, इतने सारे इतने बढ़िया ड्रेस पहन कर आया सेंट वाले, कोई देखने वाले एक भी नहीं यार, बेकार है ना, नहीं सब हम दुनिया को दिखाने के लिए पहनते, लेकिन हमारे ठाकुर जी पहनते हैं जब कोई नहीं है आधी रात में, बताओ सोने से पहले क्या रहस्य है। बिल्कुल रहस्य है, क्या रहस्य है, क्योंकि जो सचमुच कोई अपने को श्रृंगार करता है, वो श्रृंगार किसको दिखाने के लिए करता है, उनके जो सचमुच प्रेयसी होगा, कोई प्रियतम अपने प्रियतमा के लिए अपने को सजाता है, कोई प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए अपने को श्रृंगार करता है ना, नहीं पत्नी पति के लिए श्रृंगार करता है और पति पत्नी के लिए श्रृंगार। तो इसीलिए हमारे ठाकुर जी जगन्नाथ जी ने आधी रात में जब जगत सो जाता है तब अपने आप को बिल्कुल विशेष श्रृंगार करके वृंदावन प्रवेश करते हैं, रासलीला में जाते हैं, वो सोते कहाँ, उनके रास प्रवेश होता है इसीलिए श्रृंगार होकर जाते हैं। हाँ जानते ना, दास तो रजनी होता ना, रात में ही होता है, मिड नाइट में होता है जगन्नाथ रमनचरी, इसीलिए जगन्नाथ जी के प्रथम स्तवक जो जगन्नाथ जी के अष्टकम है उसका फर्स्ट टाइल में यही बताया गया, कदाचित काळिंदी तट विपिनो, उनको तो देखा गया कभी कभी जमुना तीर बनचारी काळिंदी तट विपिनो मुदाभीरी नारी, मुदाभीरी माने गोपिका, गोप बालिकाओं को मुदाभीरी कहा गया, मुदाभीरी नारी बदन कमलो स्वाद मधुप, उन गोपिकाओं के चुंबन देने हुआ उनको आलिंगन करते हुए जमुना किनारे ऐसे पाया गया उनको, कब पाया गया, वही रात में इसलिए चले जाते हैं, दुनिया जब सो जाता है खूब खूब ड्रेसिंग पेंटिंग हो करके वहां जाते हैं, ब्रज प्रवेश करते हैं, सुबह फिर मंगलारती में आ जाते हैं, लो ये डेली का काम है, इसीलिए सोते नहीं, और सोएंगे कैसे, नाइट ड्यूटी वहां चलता है, डे ड्यूटी इधर, हाँ इसीलिए कदाचित डेली जाते हैं, डेली जमुना तीर बनचारी रास रजन डेली करते हैं, इसीलिए सोते नहीं, श्रृंगार करते मिड नाइट में, जिनके लिए करते हैं उन्हें वही देखते हैं, हम क्या देखेंगे, हाँ गोपिकाओं को देखते, तो वही रास विहारी हैं, वही असली रास विहारी हैं जो डेली रास करते हैं, और प्रमाण है उसका। दिन में श्रृंगार करते नहीं, रात को मिडनाइट में करके जाते हैं, कोई नहीं देखता, उसको छिप कर चले जाते। रास में तो केवल प्रवेश गोपिकाओं का है, और किसी का प्रवेश हो ही नहीं सकता, आम आदमी जा ही नहीं सकता, इसलिए वो जाते हैं रास पर उसके। तो केवल उस चिन्ह में जगत में जाते हैं, वो लीला करने हमारे लिए क्या करते हैं? बोले आप और हम के लिए भी लीला करते हैं, पूरे देवता मनुष्य के लिए भी लीला करते हैं। एक छोटी सी कहानी बता करके पूरा कर दूंगा। आपको पता होगा जगन्नाथ भगवान का जन्म तिथि, उनका जन्मदिन भी होता है ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसको देव स्नान पूर्णिमा करते हैं, स्नान करते हैं उसी दिन जन्मदिन करके इतने बाहर आते हैं, स्नान टान करके इतने खा लेते हैं, उनको बीमार हो जाते हैं तो सिक बेड में जाते हैं, बीमारी वार्ड में जाकर रहते हैं, बीमार वार्ड में रहते हैं तो दर्शन बंद है क्योंकि तबीयत खराब है उनका, और तीनों तबीयत खराब है सिक बेड में रहते हैं तो सारे लोग जो हैं व्याकुल हो जाते हैं, प्रभु दर्शन नहीं मिलता, नयन में ऐसी नयन को देख नहीं पाते हैं, आकुल बिकड़ कर रोते हैं, सबकर नन तरसता है, अब तक चकाख ही नहीं देखा, इस आयत नेत्र को नहीं देखा, सब बड़े दुखी होते हैं। तो जब भगवान फिर अपना बीमारी ठीक हो जाता है, 15 दिन में ठीक हो जाते हैं, ठीक होते हैं, जब बेड से उठते हैं पहली बार दर्शन देंगे, उस दिन का एक नाम उड़ीसा में अभी भी आप लोग जगन्नाथ भगवान आपसे जानते होंगे, उस दिन रथ यात्रा के पहले दिन जब वो उठते हैं अपने सिख के माने हॉस्पिटल रिलीज होते हैं, हॉस्पिटल से रिलीज होकर आते हैं तो उसी दिन ही दर्शन देते हैं, उस दिन को कहा गया है नेत्र उत्सव। क्या कहा गया? नेत्र माने आंख, आंख के लिए उत्सव, फेस्टिवल फॉर आइस, आंख के लिए उत्सव है, आंख के लिए उत्सव क्या है ना, मेरे प्रभु के दर्शन, उनके दर्शन ही आंख के असली उत्सव है, इसलिए इस दिन को कहा गया नेत्रोत्सव, नेत्र के लिए उत्सव तो ही है, उनके प्रभु के दर्शन कर ले जा करके। जो नेत्र है, जिनका आंख है लेकिन प्रभु के इस प्रभु को दर्शन नहीं किया, उसके नेत्र तो नेत्र ही नहीं है, वो कांच के गोला हो सकता है, आंख नहीं हो सकता। तो नेत्र उत्सव के दिन जितने तड़पते हुए भक्तगण, वो तो 15 दिन से पड़े कब देखूं कब देखूं, तो उनके जिस दिन आज नेत्रोत्सव है, आज देखूंगा, प्रमाणिक दर्शन होगा, नवजौवन दर्शन होगा, उन तीन नाम में कहते हैं, एक तो नेत्र उत्सव, एक प्रमाणिक दर्शन, एक नवजौवन दर्शन, अभी नया ड्रेस पहन करके नवजौवन दर्शन होगा आज, इसलिए भीड़ बहुत रहता है, लेकिन जितने तड़पाहट मनुष्य के है, इतने तड़पाहट देवी देवताओं का भी है, वो भी सब देव देव जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर, ये सबके नाथ है, सबके मालिक है, परम स्वामी है। तो देवता भी तड़पते हैं, हम भी देखेंगे, इतने देख नहीं पाए, हम भी देखना चाहते हैं, हमारे नेत्र सफल करेंगे, देखेंगे, तो इसीलिए टाइम फिक्स के लिए ठाकुर जी ने बोले देखो देवता लोग आपने तो धरती को टच नहीं करते, आप तो सद्गुणी वाले हैं, ऐसा करो आपका टाइम है 12 बजे से 4 बजे तक, ये 4 घंटा आपका है, वह 4 बजे से लेकर के मनुष्य लोग आएंगे, ये धरती के जो मनुष्य, मनुष्य को देवता लोग बड़े गंदे मानते हैं, बहुत हम जैसे कीड़े मकड़े को मानते हैं, देवता लोग हमको ऐसे ही मानते हैं, बड़े गंदे हैं क्या, तो इसलिए धरती को छूते भी नहीं है देवता लोग, तो इसलिए बोले आप लोग सतगुणी हैं, आप मध्य रात्रि में आ जाओ, मैं तो आज रात भर दर्शन दूंगा आपको, 12 से 4 बजे तक आप दर्शन कर लो, तो उसके बाद आप चला जाना, फिर मनुष्य की टर्न आएगा, फिर वो दर्शन 4 बजे से करेंगे। तो मनुष्य लोग तो रात नहीं सोते हैं, 4 बजे दर्शन खुलेगा, हम दर्शन करेंगे, फिर ताक में लाइन में खड़े रहते हैं देवताओं का साल में एक दिन उनको मिलता है, वह 12 से 4 हमारा टर्न है, तो करोड़ों संख्या में देवता है, और उनके सब अपना अपना गाड़ी लेकर के भीड़ लगा रखे हैं, हम पूरा देख लें, ऐसे मिस नहीं करेंगे आज के दर्शन, नवजौवन दर्शन नेत्रोत्सव हम तो करेंगे, सारे देवताओं विदाउट फेल आते हैं दर्शन के लिए, इसी टाइम फिक्स 4 घंटे के अंदर करना है। एक देवताओं से सबसे बिजिएस्ट देवता है, वर्कलोड उनका सबसे ज्यादा है, इतने काम ओवर टाइम करते हैं, वो देवता कौन है? जमराज, सबसे ज्यादा काम उनके पास है, क्यों? मैं बोला कि खूब कम लोग जाते हैं लेकिन इतने पापी लोग पढ़ते हैं, हम इतने पाप करते हैं, उनको फाइल बनाते बनाते वो हद हो गया उनके, कितने एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट किए, इतने असिस्टेंट रखे, लेकिन फिर भी ओवर टाइम करना पड़ता है, पाप बढ़ता है तो इसलिए उनका काम बढ़ता है। तो इसलिए उन्होंने बहुत देर तक काम में बिजी रहते हैं। अब आज नवजौवन दर्शन है, नेत्रोत्सव है, तो जमराज के जितने स्टाफ थे चित्र गुप्ता आदि बोले सार आज तो चलेंगे ना, हमें गाड़ी रिजर्व किया हूँ, बस रिजर्व किया हूँ, चलेंगे टाइम पर चले ना सार, चार बजे पाँच मिनट बाकी है सार, हम सब तैयार है, आप चलना है ना, बस ये लास्ट फाइल क्लोजिंग करता हूँ, अब चलेंगे। अब तो देखो इतने पेंडिंग पड़ा है, हम अभी मेरा भी इच्छा है जाने के लिए, लेकिन बस ये लास्ट, उसको सब कंप्यूटर खोलो, बंद करने से पहले ये फाइल क्लोज करके चलते हैं। जमराज स्वयं कंप्यूटर क्लोज करने से पहले वो फाइल क्लोज किए, देखे, नोट करके फिर बोले गाड़ी बैठे, पाँच मिनट के अंदर चलना, हाई स्पीड में चले जम लोग से, वो आ करके गाड़ी पार करके भागे, बोले दर्शन वंदना हो जाए, पाँच मिनट के अंदर दर्शन कर लेना चाहिए। सारे देवता तो वापस जा रहे थे, ये दी लास्ट में आए उन्होंने, आ करके पूरे स्टाफ भागे भागे चले, कोई कुछ भी देखना वाले नहीं, टाइम बहुत कम है। जमराज भी गए, आप लोग पूरी मंदिर गए होंगे ना, मंदिर में जैसे घुसेंगे सबसे पहले जगमोहन आता है, जहाँ गरुड़ जी के पिलार है ना, गरुड़ जी बैठते हैं, फिर उनके अंदर होकर के जाना होता है जगन्नाथ जी दर्शन। तो गरुड़ जी के पास जब जमराज गुजर रहे थे, बाकी लोग तो चले गए देखने के लिए, तो कुछ चार बजने वाला ही था, तो गरुड़ जी के ऊपर ऊपर में छात में एक चिड़िया था घरचटी, वो टीं 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 आवाज़ किया। चिड़िया लोग सुबह सुबह तो आवाज़ करते ही है ना, नहीं उनका इनके स्वभाव है नहीं, आवाज़ वो आवाज़ किया तो जमराज घूमकर देखे, उसको देखे तो आश्चर्य होकर ऐसे देखे, अब एकाध मिनट उसको देखे, बोले अच्छा इसे इसे कन्वे चिड़िया भी देख रहा, तो बोले रही तू जमराज है, मुझे इसे देख रहा है, गरुड़ जी भी देख रहे हैं मेरे सामने, इसे क्यों देख रहा है, इसे ये आया ठाकुर जी को दर्शन ना करी उनको क्यों देख रहा है। अब दोनों सोच में पड़े थे, जमराज जी इसे देखे इसे करके चले गए, टाइम बहुत कम था, दर्शन में चले गए अंदर, जैसे चले गए वो चिड़िया बिल्कुल व्याकुल हो गया डर के मारे, तुरंत आया, रोध हो करके आके गरुड़ जी के चरण में गिरा, बोला हे गरुड़ जी आप हमारे राजा है, पक्षी के राजा है, पक्षीराज है, मैं आपके शरण में हूँ, आपके वहीं में घोसला करके बैठा हूँ, मैं क्या गलती किया था आपके सामने घटना देखिए, मेरे स्वभाव है सुबह होते ही मैं उठ जाता हूँ, मेरे चिंची आवाज़ करता हूँ, वो देखिए वो मुझे किस प्रकार देख कर गए, लगता है कि आते समय मार डालेंगे मुझे, मृत्यु की देवता है भाई, गॉड ऑफ डेथ, क्या करेंगे, तो मैं आपके शरण में हूँ, आप मुझे रक्षा करो बचाओ। गरुड़ जी बोले मैं भी देखा हूँ, तो पता नहीं जमराज का क्या होता है, वो दर्शन करने है, आपको क्यों इसे देख रहा था, कोई बात नहीं चिंता मत कर, तू मेरे शरण में हूँ, मैं पक्षीराज हूँ, उनको नहीं पता मेरा पावर कितना है, क्या करेगा तेरा मैं होते हुए, आपको ऐसे सेव कर दूंगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, बट मेरे ऊपर आपने डिक्की में बैठा लिया, उनको बैठा करके निकल गए इतने हाई स्पीड में। मैं कल बता रहा था ना गरुड़ जी का तेज गति कितना है, मन की चाल की तरह चलते हैं, इतने तेज से गए जगन्नाथपुरी से मंदिर से निकल करके, सो सुपर स्पीड में गए, बिल्कुल मानसरोवर लेक हिमालय के उस पार, मानसरोवर ह्रद के पास में उनके किनारे एक विशाल अस्वस्थ वृक्ष था, उसके वृक्ष के कोटर था फूल, उसके अंदर उनको सुरक्षित रख दिए। बोले भरखो वो तो सोच भी नहीं पा गया इतनी जल्दी कैसे आ गया, एक मिनट के अंदर छोड़कर वापस आकर के अपने खंभे पर बैठ गए, इतने हाई स्पीड में गए और आए, सुबह सुबह गए थे चार बजे, लेकिन पसीना उतर रहा था, बिंदु बिंदु श्रम बिंदु आ गया था। अब गरुड़ जी वहाँ दर्शन दर्शन करके वापस आए ना, सॉरी जमराज दर्शन करके वापस आए, आ करके वही देख रहे हैं, फिर उसको वो चिड़िया तो है ही नहीं, वो आश्चर्य होकर देख देखते जा रहे हैं। गरुड़ जी बोले जमराज ये किसको देख रहे हैं आपने, दर्शन तो हो गया ना। ना गरुड़ जी क्या बताऊं, मैं बड़ा समझ पड़ा हूँ, ये था तो अभी जाते समय देखा था, अभी है नहीं। गरुड़ जी हंसने खोले, अब देखेगा अभी है थोड़ी, मैं तो उनका काम कर दिया हूँ। बोले क्यों देख रहे हैं आपको, ना बात कुछ है ना क्यों क्यों देख रहा है, क्या दोष किया था, वो सुबह सुबह अपना आवाज किया अपने स्वभाव, आप क्यों उसको इसे देख रहे हैं। तो जमराज गरुड़ जी को मोड़कर देखे, बोले गरुड़ जी मैं जाते समय आप तो अच्छा खासा बैठे थे, अब आप पसीना क्यों उतर रहा है आपका, कोई जिम में गए थे क्या सुबह सुबह? बोले नहीं मैं तो बैठा, हाँ नहीं बिल्कुल पानी दिखाई पड़ रहा है आपके मस्तक में। बोले नहीं ऐसे कुछ नहीं है, गरुड़ जी छिपाना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते कि मैंने गया। गरुड़ जी बोले वो बात है छोड़ो, तो कभी कभी गर्मी थोड़ा लग जाता है ऐसा बात, लेकिन आप इसे क्यों जाते समय इसे देखे आते समय इसे देख रहे क्या रहस्य? बोले गरुड़ जी देखो क्या बताऊं, आप पूछ रहे हैं तो आप बता देता हूं, मैं तो बहुत फंसा हूं आश्चर्य ना क्या ना, एक तो लेट हो गया आज नवजीवन दर्शन में आते आते, एक बार लास्ट मोमेंट में मैं आया सारे स्टाफ देते, आते समय में जो लास्ट फाइल क्लोज कर रहा था उसी चिड़िया का था फाइल, आज उसको मरना ही था, उसी का मृत्यु आज था। गरुड़ जी थोड़ा सीरियस हो गए, बोले रियली ना, हाँ मैं फोटो देखा था उनका, इसीलिए तुम्हें देखा उनको, बोले वो इधर कैसे? मैं देखा आज उनका प्रभु के विधान के अनुसार आज उनको मरने का तिथि, आज डेट है उनका मरने का। बोले कैसे ना मरने का, लेकिन स्थान अलग था, स्थान और विधान अलग था, काल तो था, काल में लिखा था कि बिल्कुल 4 बजे ही मृत्यु था उसका, 4 बजे मृत्यु था, ये काल था न स्थान, न स्थान था, मान सरोवर हृदय के किनारे एक अस्वस्थ बुखे के कोटर में एक काला नाग के दंशन में उसका मृत्यु का विधान था, वो आज सुबह 4 बजे मरना था। और मैं देखा अभी 2.5 मिनट भी बचा ही नहीं, 1.5 मिनट बचा है, और वो इधर बड़ा से आजा से मजा से आवाज कर रहा है, तो मैं तो दिमाग चढ़ गया मेरे, ये कैसे हो सकता है, उनको तो यहाँ होना चाहिए था, वहां सांप बैठा होगा उसको काटने के लिए, वो यहाँ कैसे बैठा है? तो उसको देख करके मेरा दिमाग आउट हो गया, इसीलिए मैं गुस्से में देख रहा था ना। गरुड़ जी बोले फिर ना, फिर क्या, मैं तो दर्शन में गया, बोले प्रभु जी रिजिग्नेशन लेटर पकड़ो, हम मैं नहीं काम नहीं करूंगा, पकड़ो रिजाइन आपका, आपका काम आप जाने। गरुड़ जी के पसीना ज्यादा उतरने लगा, बोले फिर क्या हुआ ना, फिर क्या? ठाकुर जी में जगन्नाथ जी बोले अरे जमराज काहे की चिंता कर रहा है, कोई बात नहीं ना, क्या ठाकुर जी अभी 1.5 मिनट के अंदर मरना था उसको, और 2000 माइल दूर में उसको पहुंचना चाहिए था, अभी यही बैठा है तो कैसे जा सकता है इतनी दूर? अरे तू तो क्यों सोचता है ना, कोई है नहीं उपाय, चिंता मत करो, हो जाएगा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा हो जाएगा। जमराज बोले कि प्रभु आपने नियम बना रहे और आपके घर में भी नियम हो रहा है, ये तो बहुत गड़बड़ है, ये आपके घर में, आपके घर में बैठ कर आवाज कर, जब अभी उनको यहां होना चाहता मरने के लिए, ये तो बहुत, आपके घर में तो मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन ये तो बहुत नहीं, अगर मेरे घर में मैं करवा डालूंगा, काहे चिंता कर रहे हो, मेरे पेट में हाथ थापड़ करके मुझे विदा कर दिए, अब मैं आ करके देखता हूँ 1.5 मिनट हो ही नहीं, वो चिड़िया गया कहाँ। ये बात सुन करके गरुड़ जी के पसीना जो थोड़ा थोड़ा निकल रहा था अच्छे तरह से निकलने लगा। जमराज बोले गरुड़ जी हो क्या आपके, इतनी पसीना उतर रहा है, क्या हो गया, सांस ले रहे? नारे जमराज क्या बताऊं, मैं तो सोच रहा था कि मैंने बचा दिया, अरे मैंने ही मरवा दिया, मुझे नहीं पता था वो तो सचमुच यहाँ था तो आप भी नहीं कुछ कर सकते, बचा हुआ था मैं, मंदबुद्धि दुर्बुद्धि उनको बचाने के लिए मेरे पखीर आजत तो दिखाया, धिक मरा जीवन को, धिक मरा पावर को, मेरे पोस्ट को, 24 घंटे प्रभु के सामने ताक कर बैठ रहा हूँ, उन्हीं के वाहन हूँ, उन्हीं के जान हूँ, उन्हीं के भक्त हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता चला, मेरे से काम निकाल लिए, मुझे यूज किए, अपना गाड़ी भेज करके काम करवा लिए, नियम के नियम पाल हो गया, 2000 किलोमीटर दूर में उनके लिए टाइम पर मरवा दिया, मुझे नहीं पता चला व्हाट आई एम डूइंग। ऐसे अद्भुत हमारे जगन्नाथ है, इस प्रकार जगत पालन कर रहे हैं, कोई सोच कैसे सकता, गरुड़ ही सोच नहीं पाए, जमराज ही सोच नहीं पाए, हम कौन से गाय के गोबर है भाई, कैसे जाने। ये है हमारे ठाकुर जगन्नाथ, इस प्रकार से सबको नाथ करके इस प्रकार परिपालन जगत के चलाते हैं, जो हम स्वप्न में भी सोच भी नहीं सकते हैं, हमारे सारे विचार से परे हैं, तो इसलिए उनको तो कोई जाना नहीं, जान भी नहीं पाएंगे, जाने का प्रयास मत करो। जो जमराज जैसे गरुड़ जैसे उनके सेवक, उन्हीं के बाहक, उनको नहीं पता चला, वही जाकर छोड़ कर आया, उनको पता नहीं चला बेचारा, वो बचाने के चक्कर में थाले के लिए वही मरवा डाला। तो गरुड़ जी भी आश्चर्य होकर जगन्नाथ प्रणाम करे, ठाकुर आप ही जाने आपके प्लान, आप कैसे जगत पालन करते हैं, आप ही करते हैं, मुझे नहीं पता चला। जमराज भी जाकर थैंक यू साहब आपने करवा दिया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। जगन्नाथ जी बोले काय की चिंता कर रहा है, मैं जब कर रहा हूँ, हो जाएगा सब। तो इससे जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा था, जो कुछ होगा, सब को कराते हैं, करते हैं, और कैसे करते हैं ये अचिंत्य है, हम सोच भी नहीं सकते, चिंता भी नहीं कर सकते, लेकिन केवल मान लो वो ही करते हैं, कराते हैं, और कोई कारण नहीं, सर्व कारण कारणम वही हैं, वही ईश्वर परम कृष्ण, वही जगन्नाथ है, जो अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम, कोई देवी देवता भक्त कोई नहीं जान पाया, अगर कोई जानना चाहेगा तो ईश्वर कृपाले से है छे जाहरे सहित ईश्वर तत्व जानी वारे पारे। जिनको उनके कृपा होगा वो जिनको जितना जनाएंगे वही इतना जान पाएगा, बस हमारा इतना ही शक्ति है, और क्या जान सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। जय श्री जगन्नाथ भगवान की, समवेत भक्तवृंद की, दाय गौर हरि प्रमाण।